नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग। ये किताब कुछ ऐसा कहती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।
हाँ बिल्कुल, ये किताब मतलब पर्यावरण और हमारी अंदरूनी दुनिया के कनेक्शन को बहुत गहराई से समझाती है।
सही कहा, जैसे ये विचार कि मौसम का बदलना या जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सिर्फ भौतिक कारणों से नहीं होती।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि हमारे विचार, हमारे कर्म, इनका भी सीधा असर पड़ता है।
पुस्तक में एक बड़ी अच्छी उपमा है कि हम सब एक नाव पर सवार हैं।
हाँ, या तो साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे।
मतलब हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, ये सिर्फ हम तक नहीं रहता, इसका असर उस सूक्ष्म जगत पर भी पड़ता है जिसकी बात पूज्य गुरुदेव करते हैं।
एग्जैक्टली, सूक्ष्म जगत यानी वो अनदेखा आयाम जहां हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की ऊर्जा तरंगे पैदा करती हैं, और जब बड़े पैमाने पर लोगों का चिंतन मतलब सोच निकृष्ट हो जाती है या कर्म बुरे होते हैं
तो वो उस सूक्ष्म जगत में जहर घोलने जैसा है।
हाँ, एक तरह का विषाक्त विक्षोभ। पूज्य गुरुदेव यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक जहरीला डिस्टर्बेंस।
और फिर इसी की प्रतिक्रिया हमें बाहर दिखती है, प्राकृतिक विपत्तियों के रूप में।
जी हाँ, उनका मानना था कि ये सिर्फ जमीन के हिलने या हवा के बदलने का मामला नहीं है, उसके पीछे मतलब गहरे कारण हैं।
अच्छा, तो क्या प्रकृति की अपनी कोई चेतना है जो इस पर रिएक्ट करती है? पुस्तक में नियति का जिक्र आता है, वो क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, नियति। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये प्रकृति की एक नियामक सत्ता है।
नियामक सत्ता मतलब कोई कंट्रोलिंग पावर?
हाँ, पर इसे भाग्य लिखने वाली शक्ति ना समझे, ये ज्यादा एक प्राकृतिक संतुलन का नियम है।
अच्छा।
और जब मानवीय अनाचरण यानी गलत काम हद से बढ़ जाते हैं तो ये नियति, ये संतुलन कह सकते हैं, क्षुब्ध होता है।
क्षुब्ध होता है? हाँ
हाँ, जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती है ना, छींटे बढ़ते हैं।
हाँ बिल्कुल,
बस वैसे ही हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति में दिखती है। भौतिक छेड़छाड़ तो है ही, पर विचारों और चरित्र की गिरावट का असर वो कहीं ज्यादा गहरा है।
तो ये जो नियति का क्षुब्ध होना है, क्या पूज्य गुरुदेव इसे किसी खास समय से जोड़ते हैं? युग परिवर्तन, युग संधि, ये शब्द भी आते हैं पुस्तक में?
हाँ बिल्कुल, वे समय को युग संधि कहते हैं।
युग संधि यानी दो युगों का मिलन।
हाँ, एक संक्रमण काल, एक परिवर्तन की वेला। और जैसा हर बड़ा परिवर्तन होता है, यह आसान नहीं होता,
प्रसव पीड़ा जैसा।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने यही उपमा दी है, इसमें कष्ट है, जटिलता है।
तो हमें क्या दिख रहा है इस युग संधि में?
देखिए, एक तरफ तो विनाश के लक्षण साफ हैं, बढ़ता प्रदूषण है, लड़ाइयों का माहौल है, नैतिक मूल्यों में गिरावट है,
जिसे पूज्य गुरुदेव आस्था संकट कहते हैं।
हाँ, आस्था संकट मतलब सही सिद्धांतों पर, अच्छे मूल्यों पर भरोसे की कमी, ये बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन क्या सिर्फ यही है, सिर्फ विनाश?
नहीं नहीं, वहीं दूसरी तरफ इसी उथल पुथल के बीच एक नए बेहतर युग के निर्माण की तैयारी भी चल रही है।
जैसे पतझड़ के बाद वसंत।
बिल्कुल सही, इन चुनौतियों के पार एक उज्जवल भविष्य की आशा भी है। ये मंथन का समय है, विष भी निकल रहा है और अमृत की संभावना भी बन रही है।
तो अगर समस्या इतनी गहरी है, ये आस्था संकट वाली बात, तो फिर समाधान क्या है? क्या सिर्फ बाहरी उपाय काफी हैं, जैसे नए नियम बनाना या टेक्नोलॉजी?
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ये नाकाफी हैं, मतलब जरूरी हो सकते हैं पर इनसे स्थायी समाधान नहीं मिलेगा।
क्यों?
क्योंकि असली जड़ तो चेतना के स्तर पर है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में।
अच्छा,
इसलिए वो चेतना के परिष्कार पर सबसे ज्यादा जोर देते थे।
चेतना का परिष्कार मतलब मन और बुद्धि को शुद्ध करना, उन्नत बनाना।
हाँ बिल्कुल, जब तक व्यक्ति अंदर से नहीं बदलेगा तब तक बाहर की परिस्थितियां पूरी तरह कैसे सुधरेंगी?
तो ये होगा कैसे, ये चेतना का परिष्कार? क्या पुस्तक कुछ तरीके बताती हैं?
हाँ, पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक समाधानों की बात करते हैं, वे सामूहिक साधना की शक्ति पर बहुत बल देते हैं।
सामूहिक साधना मतलब मिलकर उपासना करना?
हाँ, मिलकर ध्यान करना, प्रार्थना करना, और खास तौर पर वो गायत्री उपासना और यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।
गायत्री उपासना यानी गायत्री मंत्र का जाप?
हाँ, एकाग्र मन से, इससे चेतना निर्मल और तेजस्वी बनती है। और यज्ञ, यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग है, पवित्र अग्नि में विशेष औषधीय वनस्पतियां डालकर न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है बल्कि सूक्ष्म जगत पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।
अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है।
और पूज्य गुरुदेव का आवाहन था कि जो जागृत आत्माएं हैं, मतलब जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं, वो आगे आएं।
किस लिए आगे आएं?
मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण
के लक्ष्य के लिए।
मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है।
हाँ, मतलब इंसान को बेहतर बनाना और दुनिया को स्वर्ग जैसा सुंदर और शांतिपूर्ण बनाना। और उनका मानना था कि ये सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा ही वातावरण को बदल सकती है।
तो संक्षेप में कहें तो ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है
उसमें हम सक्रिय भागीदार हैं।
हाँ, हमारे छोटे से छोटे विचार, हमारे कर्म, उन सबका असर होता है और उनमें दुनिया को बदलने की ताकत है, खासकर अगर हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होकर कोशिश करें।
सचमुच। और पुस्तक एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है।
क्या सवाल?
कि इस बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी में, इस दुनिया को बेहतर बनाने के आध्यात्मिक प्रयास में, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी खास भूमिका को कैसे समझेगा और कैसे निभाएगा?
ये वाकई सोचने वाली बात है, अपनी भूमिका को समझना और निभाना।
हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है हम सबके लिए।